दिनभर तारीख 20 सितंबर दिन मंगलवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। भारतीय सेना का दावा, पाकिस्तानी सेना ने उड़ी सेक्टर में भारतीय ठिकानों पर फायरिंग करके युद्ध विराम का किया उल्लंघन। भारतीय मीडिया के मुताबिक 10 घुसपैठिए मुठभेड़ में मारे गए, पर सेना ने नहीं की पुष्टि। उड़ी की जांच संभाली NIA ने।
अगर 17 फौजी बेचारे मारे गए तो हमें बिल्कुल उनकी फैमिली के साथ हमदर्दी है, लेकिन जो कश्मीर में 80 से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे गए उसमें से तो एक के लिए भी तहकीकात नहीं हुई, बल्कि उनसे किसी ने ताज़ियत तक नहीं की।
मुलायम सिंह ने अमर सिंह को बनाया समाजवादी पार्टी का महासचिव।
कौन बाहरी कौन अंदर का, मैं तो सिर्फ ये जानती हूँ समाजवादी आइडियोलॉजी नेता जी हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं, और वो जो करते हैं बहुत सोच समझकर करते हैं।
कार्यक्रम में खबरें और भी होंगी, लेकिन पहले BBC समाचार।
BBC समाचार, अमरेश द्विवेदी से। भारत प्रशासित कश्मीर में सुरक्षा बलों का दावा है कि उन्होंने पाकिस्तान से भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे 10 संदिग्ध चरमपंथियों को मार दिया है। चरमपंथियों का ये दल कथित रूप से उड़ी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था, जहां रविवार को भी हमले हुए थे जिसमें 18 भारतीय सैनिक मारे गए थे। पिछले कुछ सालों में सीमा पार से ये सबसे बड़ा हमला था जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा दिया है। उड़ी में हुआ हमला भारतीय कश्मीर में 10 हफ्तों के अलगाववादी प्रदर्शनों के बाद हुआ है, जिसमें करीब 90 लोगों की हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस का कहना है कि सीरिया के अलेप्पो शहर के पास सोमवार को सहायता दल पर हुए हवाई हमले में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है। एक बयान में संस्था ने कहा है कि हमले में सीरियन अरब रेड क्रिसेंट के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई है। रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि हमले में रूसी या सीरियाई विमान शामिल नहीं थे। सीरियाई सेना ने भी ऐसे किसी हमले से इनकार किया है। रेडक्रॉस ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन करार दिया है। हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया में मदद की गतिविधियों को निलंबित कर दिया है। कांगो की राजधानी किनशासा में बीती रात हुए हमलों में 3 विपक्षी दलों के मुख्यालय को जला दिया गया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के मुख्य विपक्षी पार्टी यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल प्रोग्रेस के तबाह दफ्तर में 2 जले हुए शव मिले हैं। विपक्ष का कहना है कि सोमवार को राष्ट्रपति जोसेफ कबीला के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। सुरक्षा बलों पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोली चलाने का आरोप है। हालांकि सरकार ने हिंसा के लिए हथियारबंद प्रदर्शनकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता रूपर्ट कोलविल ने ताजा हिंसा पर गंभीर चिंता जताई है।
We call on all sides to show restraint and we urge the authorities to
हम सभी पक्षों से शांति की अपील करते हैं और अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का सम्मान किया जाए। हम मांग करते हैं कि हिंसा की विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच हो और मानवाधिकार हनन और आपराधिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाए। ये थे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता रूपर्ट कोलविल के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। फ्रांस की एक संसदीय जांच कमेटी ने बर्बरता रोकने के लिए सभी बूचड़खानों में CCTV कैमरे लगाने की अनुशंसा की है। समिति ने बूचड़खानों से भी कहा है कि वे पशुओं को मारने से पहले उन्हें बेहोश करने का ऐसा तरीका अपनाएं जो मुसलमानों और यहूदियों को स्वीकार्य हो। शाकाहार की वकालत करने वाले एक संगठन ने फ्रांस के एक बड़े बूचड़खाने का ऐसा वीडियो जारी किया है जिसमें भेड़ के वध के दौरान उसकी पीड़ा नजर आ रही है। इस वीडियो में कुछ पशु गला रेते जाने के बाद हुक से लटके और छटपटाते नजर आ रहे हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ एक महिला की चाकू से गोद कर हत्या करने का मामला दर्ज किया है। BBC समाचार।
BBC हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। भारत प्रशासित कश्मीर के उड़ी सेक्टर में रविवार को हुए चरमपंथी हमले के बाद घाटी के सीमावर्ती इलाकों में तनाव जारी है। आज भारतीय सेना ने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने उड़ी सेक्टर में ही नियंत्रण रेखा पर भारतीय ठिकानों पर फायरिंग करके युद्ध विराम का एक बार फिर से उल्लंघन किया। इस बीच भारतीय मीडिया की खबरों के मुताबिक 10 घुसपैठिए सेना के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए हैं, लेकिन सेना ने इसकी पुष्टि नहीं की है। हमले की जाँच के सिलसिले में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी ने FIR दर्ज की है और जाँच दल ने उड़ी में जानकारी इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया है। इधर नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा स्थिति का आज एक बार फिर से उसकी समीक्षा की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव S. जयशंकर सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। श्रीनगर से BBC संवाददाता रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
श्रीनगर में तैनात भारतीय सेना की 15वीं कोर के प्रवक्ता ने आज बताया कि दोपहर को उड़ी सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स ने भारतीय ठिकानों पर छोटे हथियारों से फायरिंग की, जिसका उचित जवाब दिया गया। प्रवक्ता के मुताबिक ये मुठभेड़ 20 मिनट तक जारी रही, लेकिन इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सीमा पर तनाव और अधिक सतर्कता के बीच भारत के कई मीडिया चैनल्स ने सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट किया कि उड़ी सेक्टर में 15 घुसपैठियों ने भारतीय इलाके में घुसने का प्रयास किया, लेकिन सतर्क सेना ने इनमें से 10 को मार गिराया। सेना ने इस खबर की पुष्टि नहीं की है। इस बीच आज श्रीनगर के हवाई अड्डे पर भारत की वायुसेना का MiG-21 युद्ध विमान घटना का शिकार हो गया। अधिकारियों का कहना है कि विमान की क्रैश लैंडिंग के दौरान पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया था। इस घटना के कारण एयरपोर्ट की रनवे को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद कई फ्लाइट्स को देरी का सामना करना पड़ा। रविवार को उड़ी में सैन्य ठिकाने पर हुए हमले के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या NIA ने इस घटना की जाँच शुरू कर दी है। NIA के अफसरों ने घटनास्थल से फॉरेंसिक जाँच के लिए नमूने इकट्ठे किए हैं। इस जाँच पर अपनी प्रतिक्रिया में विधायक इंजीनियर रशीद ने कहा कि आंदोलन के दौरान फोर्सेज की कार्रवाई में मारे गए लोगों को किसी ने पूछा तक नहीं।
अगर 17 फौजी बेचारे मारे गए तो हमें बिल्कुल उनकी फैमिली के साथ हमदर्दी है, लेकिन जो कश्मीर में 80 से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे गए, उसमें से तो एक के लिए भी तहकीकात नहीं हुई, बल्कि उनसे किसी ने ताज्जुब तक नहीं की। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि आपको चाहिए था कि आप कम से कम जो भी कश्मीर में किलिंग्स हुई उनकी भी तहकीकात करते। हमारा इसीलिए मानना है कि दिल्ली को लगता है कश्मीरियों का खून पानी से भी पतला है।
गौरतलब है कि पिछले सप्ताह गृह मंत्री ने हालात को सामान्य बनाने के लिए सुरक्षा बलों को 7 दिन की समय सीमा दी थी, जो कल खत्म हो गई। आंदोलन पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है, और इस बीच अलगाववादियों की कॉल पर घाटी में हड़ताल जारी है। पुलिस ने हिंसा और लोगों को उकसाने के आरोप में 4,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
जब भी भारत में उड़ी जैसे चरमपंथी हमले होते हैं, तब तब कुछ हलकों में मांग उठती है कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर रोक लगे, दोनों देशों के लोगों के आपसी संबंधों को सीमित किया जाए। ऐसी ही एक सेवा है दिल्ली लाहौर बस सेवा। 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में ये बस सेवा शुरू हुई थी। दोनों देशों के लोगों को जोड़ने के लिए इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। विनीत खरे ने लाहौर से आज दिल्ली पहुंचे एक दंपति से बात की।
हम इस वक्त हैं दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर टर्मिनल के सामने, और हमारे साथ हैं दो मेहमान। जो दिल्ली लाहौर बस चलती है, लाहौर से जो बस आती है वो यहाँ दिल्ली में रुकती है, यहीं इसी टर्मिनल पर आती है। इस बस सेवा की शुरुआत 1999 में की गई थी। कोशिश थी कि दोनों देशों के जो संबंध हैं उन्हें सुधारा जाए। आज इस बस सेवा में सिर्फ दो लोग आए हैं। आबिद साहब, ये बस कितनी महत्वपूर्ण है, खासकर हम जिस तरह से देखते हैं कि हमेशा बात होती है कि संबंध भारत और पाकिस्तान के अच्छे नहीं हैं, उस लिहाज से 1999 से हम देख रहे हैं लगातार यहाँ से लोग पाकिस्तान जाते हैं लाहौर, और लाहौर से वापस भारत आते हैं।
हम तो ये तीसरी दफ़ा आए हैं, और ये तो तकरीबन काफ़ी बेहतर सर्विस हमें तो नज़र आई है। तीसरी दफ़ा आए और तीसरी दफ़ा सुकून और फैसिलिटी के साथ आए हैं हम लोग तो, और इसको तो शुरू रखना चाहिए, तो इसको स्टार्ट रहना चाहिए। कन्वेंस का भी काफी प्रॉब्लम नहीं होता इसमें, हर चीज आसानी से आ जाती है।
आप मैम, आप पहली बार आई हैं?
नहीं, मैं भी तीसरी बार आई हूँ उनके साथ ही। बहुत सेटिस्फाई हैं हम लोग सर्विस के साथ भी, और बहुत स्टाफ आपका अच्छा है, और ये रहना चाहिए।
दोनों सिर्फ दो लोग थे पूरा सफर?
पूरा दो लोग सफर में किया हमने।
शौक थे इस बार जब हमने टिकट्स लिए कि कोई भी नहीं है हमारे साथ, वरना पहले हम आए थे तो काफ़ी तकरीबन पूरी बस भरी हुई थी, लेकिन इस बार हम लोग खुद शौक ने कि कोई भी नहीं था और हम सिर्फ दो ही थे।
क्या कारण है आने का?
जी हाँ, और ऑपरेशन के लिए आया था मैं। ये अपोलो हॉस्पिटल से मेरा लीवर ट्रांसप्लांट ऑपरेशन हुआ था, और इस बार मैं फॉलोअप के लिए आया हूँ, तो ये मेरा तीसरा ट्रेवल है।
हमेशा बात होती है कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब भी भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में थोड़ी तल्खी आती है, खराब होने शुरू होते हैं, तो ये कहा जाता है कि भाई इस बस सर्विस का सभी का निशाना रहता है कि इस बस सर्विस को रोका जाए। ये सर्विस आप जैसे लोगों के लिए कितनी ज़रूरी है, कितनी अहम है?
देखिए जी, ये सर्विस तो बहुत ज़रूरी है। जो अफोर्ड नहीं कर सकते बाय एयर आना, तो ये बाय आसानी आ सकते हैं, चाहे कराची से आए चाहे लाहौर से आए। प्रॉब्लम नहीं आती, कन्वेंस की भी नहीं आती हमें, यहाँ पे कोई दिक्कत भी नहीं होती, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है।
यहाँ पर कोई भी हमें ऐसा फील नहीं होता कि यहाँ कोई पाकिस्तान और भारत का जो है वो झगड़ा चल रहा है। लेकिन ये बस सर्विस में क्यों बस खाली आई है हमें भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ भी आते हैं तो यहाँ भी पता नहीं चलता कि क्या हिंदू क्या मुसलमान या क्या पाकिस्तानी और क्या भारतीय।
आप 6 बजे से बैठे रहे तो कैसे वक्त गुजारा? 3 शायद स्टॉप होते हैं, 3 जगह आप रुकते हैं, तो कैसे अकेले आप लोग बस में थे, कैसे गुजारा अपने वक्त?
पुरसुकून बातें करते हुए हम लोग पहुंच गए यहाँ पे। नहीं, स्टाफ भी साथ था, स्टाफ भी काफी कोऑपरेटिव था वहाँ पे, उससे बातें करते रहे, बातचीत होती रही, सफर निकल गया वो सुकून से।
आपके रिश्तेदार हैं यहाँ पर रहने का इंतजाम कैसे होगा, और कितने दिनों के लिए आप आए हैं आप?
हम लोग तो यहाँ आए 8 दिन के लिए, और गेस्ट हाउस में रहेंगे, यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है हमारे, गेस्ट हाउस में रहेंगे, और हॉस्पिटल का हमला होता है उनसे काफी कोऑपरेट मिलता है हमें।
यहाँ पर करीब जब बस आती है, करीब यहाँ पे 5:30-6 बजे बस आई है, ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। करीब 3 घंटे पहले ही हमें या किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी गेट के पीछे। पुलिस स्टाफ बाहर था और ये जब बस आई है तो पूरा एस्कॉर्ट होता है उसके साथ, पुलिस की गाड़ियां आती हैं सुरक्षा व्यवस्था देने के लिए। और जैसा कि हमारे स्टाफ यहाँ पर बता रहे हैं कि कई बार कुछ दिनों से यहाँ पर बस खाली जा रही है, कई बार जैसे आज सुबह एक यहाँ पर हमारे अधिकारी ने बताया कि सुबह आज जो बस गई है लाहौर में उसमें कोई नहीं था। और आने वाले हमें दिनों में देखना होगा कि क्या ये जो भारत पाकिस्तान के रिश्ते खराब हैं, अभी अच्छे नहीं हैं, दोनों तरफ से बातें कही जा रही हैं, उसका असर क्या इस बस सेवा पर पड़ता है कि नहीं। हालांकि जैसा कि मैंने पहले कहा 1999 से लगातार ये बस सेवा चल रही है, बीच में कुछ महीनों के लिए जब भारतीय संसद पर हमला हुआ था तब इस बस सेवा पर असर पड़ा था, तब ये बस नहीं चली थी।
उड़ी सेक्टर में चरमपंथी हमले के बाद भारत पाकिस्तान संबंधों को जोड़ने वाली लाहौर बस के दो पाकिस्तानी यात्रियों से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी विनीत खरे।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले ही सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी में शुरू हुई उठापटक थमती नहीं दिखाई दे रही। आज राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पिछले दिनों विवादों की तनातनी में रहे सारे समाजवादी पार्टी नेताओं के साथ मीडिया के सामने आए और बोले कि समाजवादी परिवार जैसा है वैसा ही रहेगा। उन्होंने कहा,
तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा आप तमाम साथियों के सामने और प्रदेश की जनता के सामने और पार्टी के जितने भी हमारे नेता और पदाधिकारी हैं उनके सामने, ये समाजवादी परिवार जैसा पहले था वैसा ही है।
समाजवादी परिवार जैसा था वैसा ही रहेगा, ये तो कहा अखिलेश यादव ने, लेकिन कल ही प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कुछ पदाधिकारियों को संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया था। आज समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने राज्यसभा सांसद और विवादों में रहे अमर सिंह को पार्टी का महासचिव बना दिया। उन्होंने अमर सिंह के नाम एक पत्र लिखा और कहा कि अमर सिंह आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैंने कुछ देर पहले बात की समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता डॉक्टर मधु गुप्ता से और पूछा कि संगठन में ये जो तेजी से फेरबदल रद्दोबदल हो रहे हैं इस पर आपका क्या कहना है?
पार्टी को सींचा है, संवारा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने और वो हमारे सबके सुप्रीमो हैं, हेड हैं और जो पार्टी में चाहेंगे वो उस हिसाब से चलेगा और आगे 2017 का चुनाव है, उन्हें हर चीज को मैनेज करना है। नेताजी का अपना तजुर्बा है, नेताजी ने पार्टी खड़ी की है और उनको मालूम है कि क्या पार्टी के लिए ठीक है क्या ठीक नहीं है एंड जो डिसीजंस लेते हैं जो करते हैं हम सब जो नेताजी कहते हैं पार्टी में हर व्यक्ति वही फॉलो करता है और इसीलिए पार्टी इतनी बड़ी बनी है।
डॉक्टर मधु, ये तो बिल्कुल बात आपकी सही है कि नेताजी जो चाहते हैं जो कहते हैं वो होता है, लेकिन अमर सिंह को पार्टी का महासचिव बना देना और खासकर अमर सिंह को जो आपके पार्टी में अखिलेश हैं या बाकी जो लोग हैं वो बाहरी आदमी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि पार्टी में समस्या की जड़ कुछ बाहरी लोग हैं, उनका इशारा अमर सिंह की तरफ होता है।
देखिए ये तो मैं नहीं कहना चाहूंगी कौन बाहरी कौन अंदर का, मैं तो सिर्फ ये जानती हूँ कि हमारी आइडियोलॉजी समाजवादी आइडियोलॉजी नेताजी हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं और वो जो कहते हैं जो करते हैं बहुत सोच समझकर करते हैं और बिकॉज उनका एक्सपीरियंस इतना बड़ा अनुभव है कि उसके आगे कोई कुछ बोलना किसी का हक ही नहीं बनता है।
कल शिवपाल कल आपके प्रदेश अध्यक्ष जो नए प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव जी, उन्होंने 7 लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अगर देखा जाए तो दूसरे गुट के खिलाफ की गई कार्रवाई के तौर पर भी आप देख सकते हैं।
देखिए तो मीडिया का भी क्रिएशन है इस तरीके से, मैंने तो जो सुना था उसमें यही था तो उन्होंने सब जो अनुशासनहीनता कर रहे थे नेताजी से कंसल्ट किया और जो पार्टी के लिए बेस्ट है वो कर रहे हैं। देखिए ये तो पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारे हेड हमारे सुप्रीमो पार्टी के गार्जियन नेताजी के हिसाब से होता है, इसमें किसी बाहर के लोगों के बोलने के लिए हम जैसे कार्यकर्ताओं को बोलने के लिए कोई हक नहीं है बिकॉज उन्होंने पार्टी को इतने बड़े लेवल पे खड़ा किया है तो अपनी सूझबूझ से ही खड़ा किया है।
नहीं, वो सारी बातें तो बिल्कुल ठीक है कि उनकी पार्टी है, उन्होंने सीच के इस पार्टी को बनाया, लेकिन जो अखिलेश यादव का प्रकरण है और जिस तरह से उठापटक पार्टी में मची हुई है उसको देखकर लगता नहीं कि पार्टी में दो फाड़ हो रहे हैं?
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई फाड़ नहीं हो रहा, सब एक हैं और अभी आज आप
लेकिन दिखता तो नहीं है।
नहीं नहीं, आज मुख्यमंत्री ने कहा है, आपने वो सुना होगा, उन्होंने कहा कि जो जैसा समाजवादी परिवार में पहले था वैसा ही अब है और वैसा ही रहेगा, इससे बड़ी तो कोई बात नहीं हो सकती, मुख्यमंत्री ने खुद कहा है ये।
तो इसका मतलब ये है कि अखिलेश यादव ने आत्मसमर्पण कर दिया?
आत्मसमर्पण नहीं होता है, ये तो हर आदमी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर एक को अपनी बात कहने का हक होता है, लेकिन पार्टी के मुखिया डिसाइड करते हैं कि क्या बेहतरी के लिए, क्या समाजवाद के लिए, क्या पार्टी के लिए, क्या कार्यकर्ताओं के लिए, क्या इलेक्शन 2017 के लिए क्या सही है, वो डिसीजंस वैसे होते हैं।
समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता डॉक्टर मधु गुप्ता बता रही थी कि आखिरकार क्यों वहां पर, यानी कि समाजवादी पार्टी के अंदर क्या उठापटक मची हुई है।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
रुख अंतर्राष्ट्रीय खबर का करते हैं। कल सीरिया के अलप्पो में राहत सामग्री से लदी ट्रकों के काफिले पर हुए हवाई हमलों के बाद से संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया में राहत सामग्री की सारी गतिविधियों को निलंबित कर दिया है। रेडक्रॉस ने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन बताया है। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए रोहित जोशी से।
सीरियन सिविल डिफेंस की ओर से जारी किए गए एक वीडियो में हवाई हमलों के ये दृश्य दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में सफेद हेलमेट पहने सीरियन सिविल डिफेंस का एक कार्यकर्ता तबाह हुए ट्रकों को दिखा रहा है। यह सीरिया के ईसाइयों का वेयरहाउस है। इसके पास ही खाने की सामग्री, कंबल और दवाओं से भरे 20 ट्रक खड़े थे जो हवाई हमलों में तबाह हो गए हैं। ये थे सीरियन सिविल डिफेंस के एक कार्यकर्ता के शब्द। सहायता सामग्री ले जा रहे इस काफिले में शामिल 31 में से 18 ट्रक इस हमले में तबाह हो गए। संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता ने बताया है कि हमले का शिकार हुए इस काफिले को युद्ध में शामिल सभी पक्षों की ओर से जरूरी परमिट मिले हुए थे। हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि उसने सीरिया में राहत सामग्री की सारी गतिविधियों को रोक दिया है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय के प्रवक्ता जेम्स लॉर्के ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा, तत्काल सुरक्षा उपायों के तहत सीरिया में राहत सामग्री के दूसरे सारे काफिलों को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। हालांकि हम अब भी सीरिया के हर जरूरतमंद व्यक्ति को सहायता पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन जब तक सुरक्षा हालातों का जायजा नहीं ले लिया जाता तब तक राहत सामग्री के काफिले अपनी जगह रुके रहेंगे। ये थे जेम्स लॉर्के के शब्द। इस हमले में मारे गए नागरिकों में से एक सीरियन अरब रेड क्रिसेंट के वरिष्ठ अधिकारी भी हैं। अमरीका और रूस की मध्यस्थता से चल रहे युद्ध विराम को समाप्त करने की सीरियाई सेना की ओर से की गई घोषणा के कुछ ही घंटों बाद यह हमला हुआ। उधर रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट के अंतर्राष्ट्रीय संघ के मुख्य प्रवक्ता बेनोइट कारपेंटर ने भी इस हमले पर अफसोस जताया है। उन्होंने जेनेवा में बोलते हुए कहा, हम सभी सदमे में हैं क्योंकि हमारे स्वयंसेवक और स्टाफ वहां कठिन हालातों में राहत पहुंचाने के काम में लगे हैं और हर समय वहां किसी न किसी को निशाना बनाया जाता है, कोई घायल हो जाता है या मारा जाता है। हम एक परिवार हैं और यह अपने परिवार के किसी सदस्य को खोने जैसा ही है। ये थे बेनोइट कारपेंटर के शब्द। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय कमेटी के अध्यक्ष पीटर मॉरर का कहना है कि मानवीय सहायता लेकर जा रहे वाहनों पर इस तरह हमला करना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन है। उधर अमरीका ने इस हमले पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि वह सीरियाई सरकार के सहयोगी रूस के साथ भविष्य में सहयोग बनाए रखने के बारे में फिर से विचार करेगा। वहीं रूस सरकार के एक प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि जब तक चरमपंथी सरकारी सेनाओं पर हमला करना बंद नहीं कर देते युद्ध विराम नहीं हो सकता। उनका कहना था कि युद्ध विराम के दोबारा से बहाल होने की उम्मीद काफी कम है। हमले का शिकार हुआ राहत सामग्री से भरा यह काफिला संयुक्त राष्ट्र और सीरियन अरब रेड क्रिसेंट की ओर से चलाए जा रहे साझा अभियान का हिस्सा था। इसे अलेप्पो प्रांत के उरम कस्बे की ओर भेजा जा रहा था जहां बीते जुलाई महीने के मध्य से कोई राहत सामग्री नहीं भेजी जा सकी है।
सीरिया के अलप्पो में राहत सामग्री से लदे ट्रकों के काफिले पर हुए हवाई हमलों के बाद से संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया में राहत सामग्री की सारी गतिविधियों को निलंबित कर दिया है।
खबर सच है
अगर बीबीसी पर है।
इस अंतर्राष्ट्रीय खबर के बाद रुख एक बार फिर से भारत का करते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कावेरी प्रबंधन बोर्ड गठित करने को कहा है और कर्नाटक को 27 सितंबर तक तमिलनाडु को 6000 क्यूसेक पानी देने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश प्रबंधन बोर्ड के गठन का विरोध कर रहे कर्नाटक के लिए निराशाजनक है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कल सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर चर्चा के लिए कर्नाटक मंत्रिमंडल की एक बैठक बुलाई है। और जानकारी के साथ हैं बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने कर्नाटक के कानूनी टीम को भी हैरान कर दिया है। कारण यह है, मैनेजमेंट बोर्ड कावेरी पानी बंटवारे ट्रिब्यूनल का निर्णय था जिसके खिलाफ कर्नाटका ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की थी और ये याचिका अगले महीने सुप्रीम कोर्ट के एक दूसरे बेंच के सामने आने वाली है। दूसरी बात यह है कि सोमवार को सुपरवाइजरी कमेटी ने कर्नाटका को निर्देश दिया था कि वह सिर्फ 3000 क्यूसेक्स पानी तमिलनाडु को छोड़ें। समझाते हैं कर्नाटका के कानूनी टीम के सदस्य ब्रिजेश कालापा।
बात यह है कि सुपरवाइजरी कमेटी जो है वो एक टेक्निकल कमेटी है और टेक्निकल कमेटी देख सकता है कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है कि और दोनों स्टेटों में कितना पानी भरा हुआ है और एक टेक्निकल कमेटी जो एक फैसला सुनाती है उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट जो फैसला कहता है उसके ऊपर के और भी पानी दो तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कोई टेक्निकल एक्सपर्टाइज तो है नहीं और सुपरवाइजरी कमेटी जो है वो टेक्निकल कमेटी है, वो इंजीनियर्स का कमेटी है और ये फैसला करने वाले जो है इंजीनियर भी होना चाहिए बल्कि वकील थोड़ी ना या तो फिर जजेस होना नहीं चाहिए। तो ये तो एक बात है कि भाई जो सुपरवाइजरी कमेटी ने जो फैसला सुनाया था उसके उससे ज्यादा ही सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है उससे भी थोड़ा दिक्कत है हमको।
कालापा के बातचीत से यह स्पष्ट हो रहा है कि कर्नाटका की कानूनी टीम आज के कोर्ट के निर्णय से खुश नहीं है और इसके बारे में उपाय ढूंढ रही है। दूसरी तरफ कर्नाटका के प्रमुख किसान नेता जी मादेगौड़ा ने कहा है, अगर पानी रहा तो मैनेजमेंट बोर्ड स्थापित करने से कुछ फायदा होगा, जब पानी ही नहीं है तो बोर्ड स्थापित करके क्या होगा। हम सरकार से पानी भी नहीं मांग रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि पानी नहीं है, हम मुख्यमंत्री से सिर्फ मुआवजा मांग रहे हैं। ये थे जी मादेगौड़ा के शब्द। कानूनी सलाहकारों के साथ बात करने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया कल कैबिनेट मीटिंग बुलवाई है ये निर्णय लेने के लिए कि कोर्ट के आदेश पर किस तरह से प्रतिक्रिया करें। राजनीतिक प्रेक्षकों के अनुसार ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ अगर एक राज्य सरकार गई तो उसका क्या परिणाम होगा। ये इसलिए क्योंकि कर्नाटका के भंडारों में तमिलनाडु को छोड़ने के लिए पानी नहीं है। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
बिहार के सिवान के जिन तीन भाइयों की हत्या के मामले में राष्ट्रीय जनता दल नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को हाईकोर्ट से जमानत मिली है, उन भाइयों के पिता चंद्र केशवर प्रसाद के लिए इंसाफ की डगर काफी लंबी थी। 16 अगस्त 2004 से इंसाफ के लिए चल रहे उनके संघर्ष ने उन्हें तोड़कर रख दिया है। तीन बेटों की मौत और ढलती हुई उम्र ने उनके लिए इस रास्ते को मुश्किलों भरा जरूर बनाया मगर उनके हौसले पस्त नहीं हुए। बीबीसी संवाददाता सलमान रवि ने चंद्रकेश्वर प्रसाद से सिवान स्थित उनके घर पर मुलाकात की।
सिवान के हॉस्पिटल रोड पर आज भी काफी गहमा गहमी है, आने जाने वालों का भी तांता लगा हुआ है। इसी तरह की गहमा गहमी उस दिन भी थी जब 16 अगस्त 2004 को चंद्रकेश्वर प्रसाद की दुकान पर कुछ हथियारबंद लोगों ने धावा बोल दिया था। यहीं के रहने वाले चंद्रकेश्वर प्रसाद के दो बेटों को तेजाब में नहलाकर उनकी हत्या कर दी गई थी। उनके तीसरे बेटे की हत्या 3 सालों के बाद हुई और इन हत्याओं के सिलसिले में निचली अदालत ने राजद के नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई थी मगर हाईकोर्ट में अपील के बाद उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई है जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
डर तो हमेशा लगता है, हम तो ये सोच रहे हैं कि वो विशाल जुलूस हम देखे हैं, जो विशाल जुलूस तो एक जैसे हाथी चलती है और चींटियों का झुंड चलता है तो यहाँ चींटियों का झुंड लगा हुआ था, मैंने कई सौ गाड़ियों की जो है कतार लगी हुई थी। अगर चींटियों के झुंड पर हाथी का एक पांव पड़ जाए तो 1000 चींटी तो एक बार मर जाएगी। तो हम तो अपने को चींटी समझ करके घर में दुबके हुए थे, ऊपर छत पर जाकर के नज़ारा देख रहे थे। अब इससे बड़ी डर और क्या हो सकती है, सारा देख करके हम कितने दहशत में थे, लगता था कि अब जो है अब हम नहीं जिएंगे, हम तो मर जाएंगे, अब आया है तो हमको भी जिंदा नहीं छोड़ेगा।
लेकिन चंद्रकेश्वर प्रसाद को हैरत है कि जिससे उन्होंने अपनी दुकान का उद्घाटन करवाया था वो अचानक इस तरह उनके बेटों के खिलाफ कैसे हो सकता है।
हमारे दुकान का उद्घाटन हमारे लड़के जो है उनके संपर्क में, ये राजीव रोशन हमारा जो है लड़का ही उनके संपर्क में रहता था, उनको कई बार जो है उनका काम भी किया है, कागज पत्र भी कागज वगैरह भी लिखा है उनको, एक आध बार मोटरसाइकिल से जैसे कि बोल रहा था कि घर भी पहुंचाया है। लेकिन उद्घाटन जिस रोज किए हैं तो और बिहारी चौधरी, और बिहारी चौधरी जी मंत्री थे वे और शहाबुद्दीन साहब थे, इन लोगों ने आकर के जो है उद्घाटन।
बेटों के हथियारों को सजा दिलाने के लिए चंद्रकेश्वर प्रसाद को लंबी कानूनी लड़ाई का सहारा लेना पड़ा, पहले दो बेटों की हत्या और फिर तीसरे बेटे की। मगर वो कहते हैं कि वो लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं बल्कि इंसाफ के लिए फरियाद कर रहे हैं।
ये लड़ाई काहे लिए? अरे हम एक बलवान से एक निर्बल की लड़ाई कैसे हो सकती? एक दीपक जो है तूफान का मुकाबला कहाँ कर सकता है? तो हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये हम सरकार से, जनता से, मीडिया वालों से या जो भी यहाँ की जनता है, जनता से इंसाफ मांग रहे हैं कि हमारा इंसाफ क्या होना चाहिए।
पेशे से व्यवसायी चंद्रकेश्वर प्रसाद का कहना है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन को हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वो काफी निराश हुए, मगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है।
देखिए यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के न्यायपालिका पर तो हमने भरोसा किया, तो यहाँ हमको न्याय मिला, उम्र कैद की सजा उनकी हुई, हाई कोर्ट में जाने के बाद जो है बदल गया और वहाँ से हमारा विश्वास टूट गया न्यायपालिका से। अब जो है सर्वोच्च न्यायपालिका में जो है यह बात गई है, तो सर्वोच्च न्यायालय तो कभी, हम जानते हैं कि हर जगह से आदमी थक जाता है, तो आदमी थक के वहाँ पहुँचता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ से हमको न्याय जरूर।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जाने माने वकील प्रशांत भूषण की याचिका पर सुनवाई करते हुए मोहम्मद शहाबुद्दीन को नोटिस जारी किया है। याचिका में शहाबुद्दीन को दी गई जमानत को चुनौती दी गई है और अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को तय की गई है। सलमान रावी, BBC सिवान।
और अब इस रिपोर्ट के बाद कार्यक्रम में वक्त है खेल की खबरों का। आदेश कुमार गुप्त एक बार फिर से मौजूद हैं स्टूडियो में। आदेश, क्या चल रहा है खेल की दुनिया में?
जी मोहनलाल, भारत और न्यूजीलैंड के बीच गुरुवार से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा, लेकिन इसी बीच भारत के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा चिकनगुनिया का शिकार होकर पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। इसके बाद भारत के कोच अनिल कुंबले ने कहा कि अभी टीम को उनके बदले किसी खिलाड़ी की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि टीम में भुवनेश्वर कुमार और उमेश यादव के साथ साथ मोहम्मद शमी भी हैं। उधर न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी तो पहले ही घुटने की चोट से पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं, तो उनके ऑलराउंडर जिमी निशाम भी चोटिल होकर पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए। उधर आज से जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट शुरू हुआ, जहां भारत के पी कश्यप लंबे समय बाद बैडमिंटन कोर्ट पर उतरे और उन्होंने क्वालिफिकेशन मैच में ऑस्ट्रिया के डेविड ओर्बेनो स्ट्रर के खिलाफ तब जीत हासिल की जब वो पहले गेम में 11-3 से आगे थे, तभी डेविड मुकाबले से हट गए। इसके बाद दूसरे क्वालिफिकेशन मैच में उन्होंने डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसिन को 21-18, 21-12 से हराया। अब मुख्य दौर में कल पी कश्यप का सामना 8वीं वरीयता हासिल भारत के ही के श्रीकांत से होगा। इनके अलावा अजय जयराम इंडोनेशिया के सोनी दवी कुनकोरो से और HS प्रणय मलेशिया के इस्कंदर जुल्करनैन जैनुद्दीन का सामना करेंगे। वैसे जापान ओपन में महिला एकल वर्ग में भारत की तन्वी लाड की चुनौती क्वालिफिकेशन मैच में ही तब समाप्त हो गई जब वो जापान की चिसातो होशी से 19-21, 21-18, 21-9 से हार कर बाहर हो गई। उधर भारत के अनूप कुमार अगले महीने अहमदाबाद में होने वाले विश्व कप कबड्डी टूर्नामेंट में भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त। और कार्यक्रम में इससे पहले कि आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
BBC समाचार। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने महासभा के उद्घाटन सत्र में सीरिया सरकार की अपने ही लोगों की हत्या के लिए निंदा की है। उन्होंने सीरिया में लड़ाई खत्म करने की अपील भी की। इस बीच एक मानवीय सहायता दल पर हवाई हमले के बाद सीरिया में बड़े सहायता अभियान निलंबित कर दिए गए हैं। भारत प्रशासित कश्मीर के सुरक्षा बलों का दावा है कि उन्होंने पाकिस्तान से भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे 10 संदिग्ध चरमपंथियों को मार गिराया है। फ्रांस की एक संसदीय जांच कमेटी ने बर्बरता रोकने के लिए सभी बूचड़खानों में CCTV कैमरे लगाने की अनुशंसा की है। भारत की राजधानी दिल्ली में पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ एक महिला की चाकू से गोद कर हत्या करने का मामला दर्ज किया है। पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत भ्रष्टाचार विरोधी कानून लाने वाला पहला प्रांत बन गया है। इस कानून के तहत भ्रष्टाचार और रिश्वत की सूचना देने वालों को पुरस्कृत करने का प्रावधान है। BBC समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी। घटना चक्र कार्यक्रम लेकर आपके सामने उपस्थित होना तय है मोहनलाल शर्मा को। विदा दें, नमस्कार।